सत्यवचन।
कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल की 10वीं पुस्तक दूसरा शमूएल का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इन अध्ययनों से अवश्य लाभ प्राप्त हो रहा होगा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं अपने उन श्रोताओं का स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों पुराने नियम की पुस्तक बाइबल के दूसरे शमूएल से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि ईशबोशेत, वैसे तो वह विधिवत शाऊल का उत्तराधिकारी था, परंतु वह राजा बनने योग्य नहीं था। उसे युद्ध विद्या का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था और न ही वह योद्धा था। वह पूर्ण रूपेण अब्नेर पर निर्भर था और अब्नेर को स्वीकार नहीं था कि ईशबोशेत उससे प्रश्नोत्तर करे। अतः अपने अनाचार के प्रति ईशबोशेत की प्रतिक्रिया पर उसने शाऊल के परिवार को त्याग दिया और दाऊद से समझौता कर लिया। तब उधर योआब ने अवसर पाकर अब्नेर की हत्या करके अपने भाई की हत्या का बदला लिया। इधर हम देखते हैं कि बिन्यामिनी रिमोन के पुत्र रेकाब और बाना ने दाऊद का पलड़ा भारी देख ईशबोशेत की हत्या कर दी और रातों रात उसका सिर लेकर दिन तड़के दाऊद के पास पहुंचे कि दाऊद उनकी प्रशंसा में उन्हें उभारेगा, परंतु दाऊद ने उन्हें अपराध का दंड मृत्यु दी। अब दाऊद संपूर्ण इसराइल का राजा था। यह समाचार सुनकर फिलिस्तियों ने दाऊद को दबा देना चाहा, परंतु परमेश्वर ने उन्हें ही दाऊद के हाथों में मारा। उन्होंने कुछ समय बाद फिर आक्रमण किया और यहोवा के साथ दाऊद ने उसे फिर मारा। इस प्रकार से हमने देखा कि दाऊद ने फिलिस्तियों को हराया और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 6 में दाऊद का वाचा संदूक के अबीनादाब के घर से निकाल लाना चाहता था इसके बारे में देखेंगे, परंतु वह व्यवस्था के संदूक पलायन की विधि नहीं अपनाता है। अतः दाऊद काम तो अच्छा करना चाहता था, परंतु उसकी विधि उचित नहीं थी। उसने वाचा के संदूक को नई गाड़ी पर रखकर सियोन लाना चाहा, जबकि परमेश्वर ने गिनती की पुस्तक अध्याय 7 उसके 9 पद में स्पष्ट व्यक्त किया था कि कहातियों को सब पवित्र वस्तुएं अपने कंधों पर उठाना था। मित्रों, उज्जा मारा गया क्योंकि उसे परमेश्वर के निर्देशों का ज्ञान होना आवश्यक था कि संदूक का स्पर्श वर्जित था, अर्थात मना था। यह परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया था। मीकल दाऊद की ईश भक्ति के जोश को देखकर उसकी निंदा करती है। मित्रों, इस अध्याय का शीर्षक हो सकता है उचित काम अनुचित विधि। मेरे विचार में यह उस प्राचीन सूक्ति में नकारात्मक प्रस्तुतिकरण की और एक विधि है। परिणाम साधनों का न्याय करता है। अनेक संस्थाओं और व्यक्तियों ने इसे अपने जीवन के सिद्धांत स्वरूप काम में लिया है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि दाऊद के जीवन का भी यही सिद्धांत था, परंतु जहां तक अध्याय 6 की यह घटना घटती है, यह सिद्धांत कार्यकारी है। मेरे विचार में यह घटना दाऊद के जीवन के महान दिनों का एक पृष्ठ है। मेरे मित्रों, यदि आपको दाऊद के जीवन का सबसे महान दिन चुनना हो तो आप कौन सा दिन चुनेंगे? क्या यह वह दिन होगा जब शमूएल ने एक युवा चरवाहे के सिर पर अभिषेक का तेल उंडेला था, या जिस दिन उसने दानव गोलियत को मारा था, या शाऊल की पुत्री के साथ उसके प्रेमालाप का दिन? वह दिन तो होगा ही, या वह दिन जब दाऊद शाऊल की उपस्थिति से भागा था, या शाऊल की मृत्यु का दिन कि अब तो दाऊद ही सिंहासन पर बैठेगा और राजमुकुट उसके सिर पर होगा। आप संभवतः उस दिन को भी महान ही कहेंगे जब उसका पुत्र अबशालोम विद्रोह में मारा गया, या उसके पुत्र सुलेमान के अभिषेक का दिन, या सब दिन उस महापुरुष के जीवन के महान दिन अवश्य हैं। तथापि मेरे विचार में दाऊद के जीवन में दो घटनाएं ऐसी हैं जो इन सबसे बड़ी दिखाई देती है। अध्याय 6 में वाचा का संदूक लाया जाना और दूसरी अध्याय 7 में दाऊद द्वारा परमेश्वर के भवन के निर्माण की मनोकामना करना। मित्रों, ये दो दिन संभवतः दाऊद के जीवन में सबसे महान दिवस थे। वाचा का संदूक उनके मध्य परमेश्वर की उपस्थिति का सूचक था और मैं मंदिर या मिलाप वाले तंबू में सज्जा के सामान और उसकी स्थिति पर विशेष बल देता हूँ। मेरे मित्रों, बाहरी प्रांगण में धूप जलाने की वेदी और पीतल का हौदा, यहाँ पर पाप का शोधन होता है। तब पवित्र स्थान में तीन वस्तुएं थी। ये वस्तुएं आराधना और मसीह के मनुष्यत्व की घोतक थी। सोने का देवदान, सोने की वेदी और भेंट की रोटियों की मेज। महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक था जिसके ऊपर दयासन था। यहाँ परमेश्वर अपनी प्रजा से भेंट करता और वाचा का संदूक पुराने नियम में मसीह का सर्वोत्तम प्रतीक था। मेरे मित्रों, यह वास्तव में परमेश्वर द्वारा रचित एकमात्र चित्रण था। मैं व्यक्तिगत रूप से मध्य युग के चित्रकारों द्वारा बनाई गई मसीह की छवि को मान्यता नहीं देता हूँ। यीशु कैसा दिखता था कोई नहीं जानता था। कुछ लोगों का कहना है कि वह श्वेत वर्ण का था और कुछ का कहना है कि वह श्याम वर्ण का था और कुछ लोगों का कहना है कि वह श्यामल था। अति संभव है कि उसका रंग सुनहरा था, परंतु हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है तथा मिलाप वाले तंबू में वाचा के संदूक में उसका चित्रण है। यह संदूक बबूल की लकड़ी का बना था जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निश्चित थी और उस पर भीतर बाहर स्वर्ण आवरण था। वस्तुकार को परमेश्वर की आत्मा ने विशेष सेवा दी थी कि वह इस संदूक का निर्माण करे। यही वाचा का संदूक जो परमेश्वर की उपस्थिति का सूचक था और यही इसराइल के लिए ठोकर का कारण बन गया, क्योंकि उनमें संदूक के प्रति अंधविश्वास जागृत हो गया था और वे सोचने लगे कि उस संदूक में ही कोई दिव्य शक्ति है, जबकि ऐसा था नहीं। वह तो मात्र एक प्रतीक था, प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक। वह सोने का था जो मसीह के ईश्वरत्व का घोतक था। लकड़ी उसके मनुष्यत्व का प्रतीक थी। वह दो नहीं, एक ही संदूक था, सोना और लकड़ी का। अपने आप में वह मसीह के ईश्वरत्व व ईशमान का होने की एकता का उदाहरण था। जैसा प्राचीन विश्वास वचन कहता है, वह संपूर्ण मानव और संपूर्ण परमेश्वर था। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि शमूएल के युग में पलिस्तियों ने इसराइलियों से युद्ध करते समय वाचा का संदूक छीन लिया था और अंधविश्वास के कारण उन्होंने गायों की गाड़ी पर रखकर वाचा का संदूक चलता कर दिया था। गाड़ी अबीनादाब के खेत में जाकर रुक गई थी, जहां वह 70 वर्ष तक रखा रहा। यरूशलेम अपने अधिकार में ले लेने के पश्चात दाऊद ने सोचा कि वाचा के संदूक के लिए यरूशलेम एक अच्छा स्थान होगा, अतः उसने संदूक को वहां लाने की योजना बनाई और वास्तव में वही स्थान परमेश्वर का चुना हुआ स्थान भी था। व्यवस्था विवरण में स्पष्ट निर्देश था, वर्ष में 3 बार अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएं। दाऊद ने यरूशलेम को जीतने के बाद उसे अपनी राजधानी बनाया और वाचा का संदूक यरूशलेम से 8 मील दक्षिण किरियत यारीम में रहा। मेरे मित्रों, दाऊद में परमेश्वर के लिए जो मनोवेग और प्रेम था वह आज बहुत कम दिखाई देता है। मैं दाऊद के सदाकालीन आलोचकों से सहमति नहीं रखता। मैं तो अपने मन में ही यह लालसा रखता हूँ कि मुझ में दाऊद की नाई परमेश्वर से प्रेम एवं जोश हो। मेरे मित्रों, आप सुनिए वह भजन संहिता 9 उसके 1 में क्या कहता है। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। दाऊद अपनी भक्ति मन की गहराई से करता था और उसकी रीति बिल्कुल अद्भुत थी। भजन संहिता 108 के 1 में उसने घोषणा की, हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। तब हम भजन संहिता 103 के 1 में हम सुनते हैं, वह कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। इस मनुष्य में परमेश्वर के लिए कैसा प्रेम और जोश भरा हुआ था। मित्रों, यही कारण था कि वह परमेश्वर की वाचा का संदूक यरूशलेम लाना चाहता था। इस अध्याय में हम देखेंगे कि वह इसका प्रयास तो करता है, परंतु उसकी विधि उचित नहीं है। वाचा का संदूक प्रथम 17 पदों में 15 बार आया है। यदि आप इस भाग को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका विषय केवल वाचा का संदूक ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह दाऊद और परमेश्वर दोनों ही के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय था। मित्रों, कम से कम 11 भजन हैं जो वाचा के संदूक को यरूशलेम लाने की घटना के संबंध में लिखे गए हैं। यहाँ एक बात तो स्पष्ट एवं निश्चित है कि दाऊद वाचा के संदूक के विषय अंधविश्वासी नहीं था। वह जानता था कि परमेश्वर कहाँ है, और वह यह भी जानता था कि वह उस संदूक में बंद नहीं था। भजन संहिता 123 उसके 1 में दाऊद ने कहा, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। जी हाँ, दाऊद जानता था कि परमेश्वर कहाँ है, परंतु उसके निकट आने का माध्यम वाचा का संदूक था, जो परमेश्वर और मनुष्य के मध्य मध्यस्थ का प्रतीक था। मित्रों, यह प्रस्तावना अत्यधिक लंबी है, क्योंकि मेरी समझ में यह अध्याय महत्वपूर्ण है। अब देखें कि दाऊद क्या करने की योजना बनाता है। आइए आप मेरे साथ 2 सामुएल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1-3 पद को पढ़ें। फिर दाऊद ने एक और बार इसराइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नाम स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहो नाम दो पुत्र उस गाड़ी को हांकने लगे। मेरे मित्रों, आप ध्यान दीजिए कि यह दाऊद की भूल थी। परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू और उसके सामान के स्थानांतरण के विशेष निर्देश दिए थे। दाऊद ने उन निर्देशों का पालन नहीं किया। अब कोई कहेगा, फलिस्तियों ने तो निर्देशों का पालन नहीं किया, परंतु वे नाश नहीं हुए, वे बचे रहे क्योंकि वे अज्ञानी थे। प्रकाशन उत्तरदायी बनाता है। जब मनुष्यों को सुसमाचार का प्रकाशन प्राप्त हो जाता है, तब वे उसके इनकार के दोषी ठहरते हैं। मैं आपसे अफ्रीका के अज्ञानियों के बारे में नहीं, अपने नगर और अपने आसपास के अज्ञानियों की बात करूंगा, क्योंकि वे सुसमाचार सुन सकते हैं और उनका उत्तरदायित्व तो महान है। मेरे मित्रों, यदि आप मसीह का इनकार करते हैं तो आप अज्ञानी के विषय कितनी भी बातें करें, आप भटके हुए हैं, विनाश के लिए नियत है, आपका न्याय हो गया है और आप अनंत नरक के मार्ग पर हैं। यही परमेश्वर की वचन की शिक्षा है। आपको शायद यह बात अच्छी नहीं लगेगी, और यदि ऐसा है तो आप इस जगत को छोड़कर किसी और जगत में चले जाएं। मित्रों, यह परमेश्वर का जगत है और नियम उसी के चलेंगे, मेरे और आपके नहीं। अतः दाऊद वाचा का संदूक लेने के लिए गया और अनुचित विधि अपनाई। वाचा के संदूक के सिरों पर छल्ले लगे थे, उनमें डंडे डाले जाते थे और वाचा के संदूक को कंधों पर उठाया जाता था। उसे लेवी लोग उठाते थे, जंगल में चलते समय कहात वंश से उसे उठाते थे, और दाऊद परमेश्वर के निर्देश का पालन से चूक गया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि सुसमाचार भी ठीक इसी प्रकार प्रचार किया जाए। मैं कभी कभी सोचता हूं कि वह मुझसे अच्छा साधन क्यों नहीं खोज पाता और आकाश में सुसमाचार क्यों नहीं लिख देता। प्रभु यीशु मसीह को तो उसके लोगों के कंधों पर ही इस संसार में जाना है। आज यह परमेश्वर की रीति है, और दाऊद के युग में भी परमेश्वर की रीति यही थी। मेरे मित्रों, दाऊद ने भूल की, और कैसी बड़ी भूल की, इसलिए वह संकट में पड़ेगा, जैसे आज भी परमेश्वर के जन चूकने पर संकट में पड़ जाते हैं। हम 2 शमूएल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, और दाऊद और इसराइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। मेरे मित्रों, दाऊद एक संगीतकार था और वह बहुत संगीत में विश्वास रखता था। वह संगीत की बहुतायत के साथ वाचा का संदूक लाना चाहता था, अर्थात धूमधाम के साथ लाना चाहता था। दूसरा शामिल 6 अध्याय उसके 6 और 7 पद में हम पढ़ते हैं, जब ये नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। मेरे मित्रों, यह बड़ी खतरनाक स्थिति थी। वाचा का संदूक बैलगाड़ी पर था और चलने पर बैलगाड़ी हिल रही थी, अतः उज्जा ने वाचा के संदूक को स्थिर रखने के लिए अपने हाथ का सहारा दिया और परमेश्वर ने तुरंत ही उसे मारा। कोई कहेगा कि इस छोटे से अनाचार की ऐसी बड़ा सजा क्यों? उज्जा की मृत्यु का दाऊद पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने तुरंत ही जुलूस रुकवाया और वाचा के संदूक को गतवासी ओबेदो दोम के घर में ही रखवा दिया। दाऊद दहल गया और परमेश्वर से अप्रसन्न भी हुआ और परमेश्वर भी क्रोधित था क्योंकि वे अनुचित रीति से वाचा का संदूक लेकर जा रहे थे। तब हम आगे पढ़ते हैं 2 शमूएल 6 अध्याय उसके 8 और 9 पद में, तब दाऊद अप्रसन्न हुआ इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक वर्तमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ क्यों कर आए? मेरे मित्रों, आप और मैं परमेश्वर का भय मानते हैं तो अच्छा ही करते हैं। भजन संहिता 110 उसके 10 में लिखा है, यहोवा का भय बुद्धि का मूल है। आज के युग में बहुत लोग हैं जिन्हें इस सत्य का बोध होना आवश्यक है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं आज प्रेम प्रेम और प्रेम के आतंक से ऊब चुका हूं। इसमें संदेह नहीं कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम करता है, परंतु आप पाप कर सकते हैं, उससे मुंह मोड़ सकते हैं और आप नाश भी हो सकते हैं। इससे बाहर निकलने का मार्ग नहीं है, अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। मेरे मित्रों, ये प्रभु यीशु के वचन हैं और ये सच हैं। हमें उसका भय मानना है और जैसा वह कहता है वैसा ही हमें करना है। उस दिन दाऊद प्रभु से डर गया और अंत में पूछ ही लिया, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? 2 शमूएल 6 अध्याय उसके 10 से 12 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना न चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया और यहोवा का संदूक गती ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। मेरे मित्रों, वह वाचा के संदूक को दाऊद नगर में लाने का दृढ़ संकल्प था। क्या उसने सबक सीखा? अब वह उसे कैसे लाएगा? याजकों के कंधों पर। आइए हम आगे पढ़ते हैं, 2 शमूएल 6 अध्याय 13 और 14 पद, जब यहोवा के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चल चुके तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया और दाऊद सनी का एपोत कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। मेरे मित्रों, आपको अचंभा हो रहा होगा कि यह सुनकर कि दाऊद नाच रहा था, परंतु यह तो परमेश्वर ने ही अपने वचन में लिखा है, दाऊद अकेला ही नाच रहा था। उसका नाचना आज के जैसा नहीं था। आप चाहे आज के नाच पर कैसा भी पर्दा डालें, वह कामुकता का ही होता है। यदि आप आराधना संबंधित कोई नाच हो तो मैं पूरी तरह से इसके पक्ष में हूँ, परंतु मेरे मित्रों, मैं नहीं सोचता कि ऐसा हो सकता है। मैं ऐसे मनुष्य को नहीं देख पाता जो दाऊद की नाई परमेश्वर से प्रेम करते हों। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद विभोर था और मेरी अपनी इच्छा तो यह भी है कि वह आज अधिक से अधिक मनुष्य परमेश्वर में आनंद करें और उसकी स्तुति करें। विश्वासियों के लटके चेहरे देखकर मुझे चिंता होती है। मेरे मित्रों, परमेश्वर को यह भाता नहीं है, हमें आनंद से उसकी उपस्थिति में आना चाहिए। आप निश्चय जाने कि दाऊद ने ऐसा ही किया था। क्या आप अपने पिता के पास मुंह लटका करके आएंगे? शायद नहीं, क्योंकि आप जब आनंद से उनके पास आएंगे तो निश्चय ही आप भी आशीष को प्राप्त करेंगे। हमारा प्रभु भी यही चाहता है। दूसरा सामुएल 6 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा है, यूं दाऊद और इसराइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। मेरे मित्रों, मीकल को ऐसा कोई मनुष्य पसंद नहीं था जो परमेश्वर से प्रेम करे, इसी कारण उसने दाऊद को तुच्छ जाना। याद रखें कि मीकल दाऊद की पत्नी थी और जहां तक दाऊद के साथ उसका संबंध था, उसका व्यवहार अत्यधिक गंभीर विषय था। हम दूसरा सामुएल 6 अध्याय के 17 पद में आगे पढ़ते हैं, और लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। मेरे मित्रों, होम बलि मसीह के मनुष्यत्व का प्रतीक थी और मेल बलि क्रूस पर बहाए उसके लहू द्वारा शांति तथा परमेश्वर के साथ दाऊद के गहरे संबंधों का प्रतीक थी। दाऊद के नाचने और उज्जा की मृत्यु के विषय अप्रासंगिक विचारों को अलग रख दें। हम परमेश्वर के वचन में लिखी बातों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लें। और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम इसमें निहित शिक्षा जो हमारे लिए है उसे ग्रहण करें। मित्रों, परमेश्वर के साथ आपके संबंध कैसे हैं? मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ। आज अपने कार्यालय जाते हुए मैं बहुत थका हुआ था क्योंकि मैं यात्रा करके लौटा था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था कि उसने मेरे जीवन में एक नया दिन दिया है। मैंने उसे धन्यवाद दिया कि उसने मेरे सब पाप क्षमा किए और मैं उसके साथ उचित संबंध में हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। वह हमारे प्रेम और हमारी स्तुति की कैसी लालसा करता है। इस अध्याय में देखने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर के साथ दाऊद के संबंध। जी हाँ, वह उसके साथ उचित संबंध में था और उसकी सेवा योग्य होने के कारण अत्यधिक आनंदित था। काश आप में और मुझ में प्रभु का ऐसा ही आनंद वास करता। हम दूसरा शामिल 6 अध्याय उसके 20 पद में पढ़ते हैं, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इसराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की लौंडियों के सामने ऐसे उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। मेरे मित्रों, यहाँ पर तन उघाड़े का अर्थ है कि उसने अपना राजसी वस्त्र उतार दिया था जिससे वह अलग राजा दिखाई देता था। वह जन साधारण के साथ सहभागी होकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। उसके महान आनंद का कारण था कि परमेश्वर की वाचा का संदूक दाऊद नगरी में प्रवेश कर रहा था। मीकल को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वह आराधना में मर्यादा और श्रद्धा भाव चाहती थी। मैं ऐसे महाढोंगियों से बहुत डरता हूँ जो समर्पण और पवित्रता की लगातार बातें तो करते रहते हैं परंतु उनके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मेरे मित्रों, ऐसे मनुष्यों से सावधान रहना है, वे बड़े खतरनाक लोग होते हैं। मैं दाऊद की ना ही उनसे डरता हूँ। दाऊद परमेश्वर का कैसा भक्त जन था। हम दूसरा शाऊल 6 अध्याय उसके 21 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने की संति मुझको चुनकर अपनी प्रजा इसराइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैंने ऐसा खेला और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार खेला करूंगा। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, दाऊद ने कहा कि यहोवा ने उसे चुना है, वह उसके सम्मुख इसी प्रकार नाचा करेगा। काश हम परमेश्वर के सम्मुख आराधना में अधिक उत्तम समय लगाएं। हम आराधनालयों में समय देते हैं लेकिन आराधनाओं का अधिक आनंद नहीं ले पाते हैं। हम दूसरा शमूएल 6 अध्याय उसके 22 और 23 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और इससे भी मैं अधिक तुच्छ बनूंगा और अपने लेखे नीचे ठहरूंगा, और जिन लौंडियों को तूने चर्चा की कि वे भी मेरा आदरमान करेंगी, और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक उसके कोई संतान न हुआ। मेरे मित्रों, मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा, यह दाऊद का कहना है। उसके कहने का अर्थ था कि वह और अधिक दीन बनेगा, सर्वाधिक दीन आराधक बनेगा। वह परमेश्वर की आराधना में अनौपचारिकता होने की चिंता नहीं करता था। उसके इस स्वभाव के कारण दाऊद ने मीका को पृथक कर दिया, उससे पूर्ण रूप से कट गया। इसी कारण उससे संतान प्राप्ति नहीं हुई। मित्रों, प्रकट है कि मीकल परमेश्वर के प्रति दाऊद के प्रेम और जोश में सहभागी नहीं होती थी। मेरे प्रिय, यह बहुत ही दुखद बात है कि परमेश्वर का भक्त है परंतु उसकी पत्नी उसके साथ में नहीं है। कई बार हमारे मसीही जीवन में भी, विश्वासियों के जीवन में भी, पति सेवा करता है परंतु पत्नी साथ नहीं देती है, और कई बार पत्नी परमेश्वर की निकटता में रहती है लेकिन पति उसका साथ नहीं देता है। आज मुझे दाऊद के परिवार के जीवन से सीखने की आवश्यकता है। क्या आज आप भी ऐसा ही जीवन तो नहीं जी रहे हैं? मित्रों, आज निर्णय लें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मैं भी दाऊद के समान पूरे परिवार के साथ आगे आना चाहता हूं। क्या आज आप ऐसा निर्णय ले सकते हैं? मित्रों, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य ही अच्छा निर्णय लेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ।